पहचान। ओम शांति। आज के इस प्रातःकालीन सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और साथ साथ इस स्वागत सत्र में, इस प्राथमिक सत्र में जो हमारे बीच पधारे हैं, हमारे वरिष्ठ भ्राता राजयोगी आत्म प्रकाश भाई जी, उनका भी हम करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। आप सभी जानते तो होंगे, कुछ नए कुछ पुराने लोग हैं ना, तो मैं इनका परिचय दे देती हूँ। आप भी हमारे सीनियर भ्राता पिछले 45 वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं। आपको ये ज्ञान नागपुर की धरनी में मिला जब आप पढ़ाई पढ़ रहे थे, MSc कर रहे थे। आपने MSc किया है केमिस्ट्री में और आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। और पिछले 40 वर्षों से हेडक्वार्टर में रहकर ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और एक विशेषता ये कि सारा का सारा परिवार ज्ञान में चलता है और सारा का सारा परिवार समर्पित। उनके मम्मी भी यहीं पे समर्पित, पापा भी यहीं, खैर अभी तो शरीर छोड़ दिया, मम्मी पापा भाई दूसरे भाई भी हैं यहाँ पे, और उनकी बहन, उनकी बहन की भर शादी होगी तो उनके बच्चे सब समर्पित। उनके बहन का एक बेटा, आप सुखधाम में ठहरे हैं ना, वहां पर एक भाई है जो आपका भांजा है, तो पूरा परिवार जिनका समर्पित हो, कितने भाग्यशाली हैं। और साथ साथ में आप यहाँ पर जो हमारा टोली विभाग है, टोली किचन है, उसके भी आप इंचार्ज है, तीनों कॉम्प्लेक्स के टोली माना ही प्रसाद, जो आते ही पहले दिन आपको टोली मिलती है, मीठा मुंह करते हैं, और जब जाते भी है तो भी लेकर जाते हैं, है ना, तो मुख मीठा कराने वाला डिपार्टमेंट है ये हमारा तीनों ही कॉम्प्लेक्स में आप देखते हैं। और इसके अतिरिक्त जो हमारे पास यूथ विंग है, उसके आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं, और साथ साथ आप देश विदेश में भ्रमण करते हैं, चाहे वो नए विद्यार्थी हो चाहे वो रेगुलर विद्यार्थी हो, सबके प्रोग्राम्स करते। अभी भी बताया कि गुवाहाटी से अभी 2-3 दिन पहले ही लौटे हैं रेगुलर स्टूडेंट्स की भर्ती करा के, और अभी फिर 15 तारीख को जा रहे हैं उमरेड में फिर से भर्ती कराने के लिए। तो हमेशा बिजी रहते हैं, चाहे हेडक्वार्टर हो चाहे बाहर के निमंत्रण हो, हमेशा तत्पर रहते हैं। हमने इनको कल फोन किया और तत्पर हो गए। हमने पहले रात की क्लास के लिए इनको रिक्वेस्ट किया क्योंकि डॉक्टर का चेंज हो गया था ना, तो कहा मेरी 9 से 10 नीचे क्लास है, तो हमने कहा ठीक है, अब सुबह आ जाओ, कहा आ जाएंगे हम। तो हमेशा सेवाओं के लिए एवर रेडी। और जैसा इनका नाम है आत्म प्रकाश, है ना, आत्मा क्या है, स्वयं अपने आप में ज्योति स्वरूप है, और उसमें से वो प्रकाश रेडिएट करना है हमें, और क्या करना है, उसके जो संस्कार है ओरिजिनल, उनके वाइब्रेशंस भी रेडिएट। तो आप देखेंगे इनकी क्लास से, आप महसूस करेंगे कि कैसे उनके ओरिजिनल संस्कार रेडिएट करते हुए आप कर्म फिलॉसफी पर प्रकाश डालेंगे। आदरणीय भ्राता जी,
ओम शांति। कर्मों की गुह्य गति, यह हमारा टॉपिक है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कर्मों की गुह्य गति को जानना बहुत जरूरी है। से कर्मों को सुकर्म कहते हैं और कौन से कर्मों को विकर्म कहते हैं। जो भी कर्म हम दिव्य गुणों से संबंधित करते हैं उनको सुकर्म कहते हैं। उससे औरों को भी सुख मिलता है और हमें भी सुख मिलता है। किसी भी विकार से संबंधित कर्म हम जब करते हैं तो उसको विकर्म कहते हैं। तो अभी हमें ध्यान देना है कि मेरे द्वारा कोई भी विकर्म ना हो, लेकिन मेरे द्वारा सुकर्म होते चले, बनते चले और मेरा भाग्य उज्ज्वल बनता रहे। कई बार हम कहते हैं बच्चा जब जन्म लेता है तो ये बच्चा अपना भाग्य लेकर आता है, ऐसे हम कहते हैं। कौन सा भाग्य साथ में लाता है? श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी अपने साथ ले जाता है, उसको ही श्रेष्ठ भाग्य कहते हैं। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो सारे जीवन भर में जो भी कर्मों की पोटली है, कर्मों का हिसाब किताब होता है, वो उसके साथ चलता है और कुछ भी नहीं चलता है। तो विकर्मों का खाता बढ़ता है तो हमें बोझ की अनुभूति होती है और अशांत और दुखी की फीलिंग हमें होती है। और सुकर्मों का खाता जब बढ़ता है तो बहुत खुशी हमें होती है, हल्केपन की हमें महसूसता होती है और वातावरण भी बहुत लाइट रहता है घर में, बहुत खुशनुमा माहौल होता है। तो व्यवहार में, कारोबार में आते हैं, घर में, बाहर सब भी हम रहते हैं तो हमें ध्यान देना है मेरे द्वारा मनसा वाचा कर्मणा कोई भी विकर्म ना हो। विकर्म कैसे हो सकते हैं? मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, संबंध से और संपर्क से विकर्म होने की संभावना होती है। अगर किसी के बारे में हम अशुभ सोचते हैं, नेगेटिव भावना रखते हैं तो पहले तो हमारी खुशी गायब हो जाती है और वो नेगेटिव संकल्प उस आत्मा तक पहुंचता है तो उसको भी दुख की फीलिंग, अशांति की फीलिंग होती है। इससे भी हमारा सूक्ष्म विकर्म बनता है। और सभी के प्रति जब हम शुभ भावना और शुभ कामना रखते हैं ऐसा व्यक्ति को हर कोई चाहता है, हर एक के दिल में उसके प्रति प्यार अनुभव होता है। और यह संपूर्ण पवित्रता की निशानी है, सबके प्रति सदा शुभ भावना रखना ये पवित्रता की निशानी है। कोई हमारे लिए कुछ नुकसान पहुंचाता है, कोई बुरा हमारे लिए करता है, तो स्वाभाविक है उसके प्रति हमारे मन में नेगेटिव भाव रहना। वो तो अपना काम कर रहा है, लेकिन मेरे पास अगर ज्ञान की समझ है तो मैं बदले की भावना न रखते हुए उसके प्रति शुभ भावना सदा रखता जाऊंगा। ये महान व्यक्ति की निशानी है। कैसे रखेंगे? कोई अगर आपकी ग्लानी करता है, आपका अपमान करता है, नुकसान पहुंचाता है, उस आत्मा के प्रति शुभ भावना रखना, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, तो बहुत बड़ी बात है, साधारण बात नहीं। लेकिन यही महानता है और यही महान व्यक्ति की निशानी है। अगर मैं स्वयं को महान समझता हूं तो मेरे मन में उस आत्मा के प्रति भी शुभ भावना सदा होनी जरूरी है। उसके लिए बहुत सुंदर युक्ति है जो ब्रह्मा बाबा के जीवन में प्रैक्टिकल थी। ब्रह्मा बाबा की कोई ग्लानी करता था या कोई अपशब्द बोलता था या कोई ऐसा व्यवहार करता था तो भी बाबा उस आत्मा का आदि और अनादि स्वरूप देखते थे और अंतिम स्वरूप देखते थे। ये आत्मा वर्तमान समय कैसा भी व्यवहार कर रही है, लेकिन जब ये आत्मा धरती पर आई थी, इसका आदि स्वरूप अनादि स्वरूप बहुत पवित्र है और अंतिम स्वरूप भी पवित्र होगा। तो ऐसा दृष्टिकोण हमारा जब रहता है तो सकारात्मक दृष्टिकोण हर एक के प्रति रहता है। हम चाहते हैं हमारे जीवन में सुख की अनुभूति करना। सुख की अनुभूति और दुख की अनुभूति करना, ये इसका आधार क्या है? हमारे मन में जब नेगेटिव संकल्प चलते हैं, व्यय संकल्प चलते हैं, तो उसके परिणाम हमें दुख की फीलिंग होती है। और जब हमारे मन में बहुत सकारात्मक संकल्प, शुद्ध संकल्प, महान संकल्प, शक्तिशाली संकल्पों का प्रवाह चलता है तो हमें सुख की फीलिंग होती है। ऐसा लगता है मैं तो स्वर्ग में हूं। तो इसलिए राजयोग के द्वारा हमें ये कला सीखना बहुत जरूरी है। राजयोग की ही ये देन है और कोई उसके लिए तरीका नहीं है। दूसरी बात, हमारे बोल के द्वारा भी विकर्म होने की संभावना हो सकती है। अगर हम किसी के प्रति बहुत मीठा बोलते हैं, सुख देने वाले बोल बोलते हैं, सुकून देने वाले बोल बोलते हैं, तो सामने वाली आत्मा को सुख की फीलिंग होती है, आनंद की फीलिंग होती है। और जब हमारे मन में कभी ऐसे कड़वे बोल निकलते हैं, किसी को चोट लगाने वाले बोल निकलते हैं, तो उसको दुख होता है, उसके प्रति हमारा नेगेटिव हिसाब किताब बनता है। सुख सुख देने वाले बोल बोलते हैं तो पॉजिटिव हिसाब होता है, वो अच्छी बात है, लेकिन दुख देने वाले बोल बोलते हैं तो नेगेटिव हिसाब किताब बनता है, जो अच्छी बात नहीं है। एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। एक बार क्या हुआ, राजा, सिपाही और सूबेदार जंगल में चले गए शिकार करने के लिए घोड़े पर बैठकर। उन्होंने घोड़ा एक जगह टांग बांध दिया, उनके उसके पैर में घुंघरू थे। तो जब वो शिकार करके वापस आए तो घोड़ा वहां नहीं मिला, तो राजा ने सिपाही को भेजा, जाओ जंगल में घोड़ा ढूंढ के आओ। ढूंढने के लिए गए, रास्ते में जाते जाते एक अंधा व्यक्ति बैठा था, तो उसको कहते, हे अंधे बाबा, यहां से कोई घोड़ा गुजरा क्या, कोई घुंघरू की आवाज आई क्या? उसने कहा, नहीं भाई, वो वापस नहीं आया जल्दी। तो राजा ने सूबेदार को भेजा, सूबेदार उसी रास्ते से जा रहा था, वो अंधा व्यक्ति बैठा था, तो उसके मुख उसने कहा, बाबा जी, यहां से कोई घोड़ा तो गुजरा नहीं, घुंघरू का आवाज तो नहीं आया? उसने कहा, नहीं भाई। तो वो भी आने के लिए देरी हो गई, तो राजा खुद ढूंढने के लिए गया, घोड़ा उसी रास्ते से गया, वो अंधा व्यक्ति बैठा था। तो राजा कहने लगे, महात्मा जी, यहां से कोई घोड़ा तो नहीं गुजरा, घुंघरू की आवाज तो नहीं आई? उसने कहा, नहीं राजन। अरे मैं राजा हूं, कैसे आपको पता चला, आपको तो दिखाई नहीं दे रहा है। राजन, आपके बोल बता रहे कि आप राजा हो। इतना सम्मान देने वाला व्यक्ति कोई बड़ा व्यक्ति होना चाहिए। सिपाही ने उसको अंधा बाबा कहा, अंधे व्यक्ति को अंधा बाबा बोले, उसको दिल को चोट वैसी लगती है। सूबेदार ने थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिया, बाबा जी कहा, लेकिन राजा ने महात्मा जी कहकर पुकारा। इतना बड़ा सम्मान देने वाले बोल बोले तो भाई ये कोई बड़ा व्यक्ति है, राजा है। तो कहने का भाव है, हमारे बोल हमारे व्यक्तित्व का परिचय देते हैं। इसलिए हमारे मुख से हमेशा मीठे बोल निकलना जरूरी है। मीठा बोलो, मधुर बोलो और शॉर्ट बोलो, शॉर्ट स्वीट एंड स्लोली। इसलिए बाबा कहते हैं, पहले तोलो और फिर बोलो। मुझे क्या बोलना है पहले सोचो, चेक करो, फिर बोलो। क्योंकि हम महान आत्माएं हैं तो हमारे बोल महान हो, साधारण ना हो। बात कर्मों की है। समाज में हम आते हैं, कारोबार में आते हैं, कई लोगों के संपर्क में आते हैं, तो हमारे कर्म कभी भी दुख देने वाले विकर्म ना हो, इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। छोटी सी बात मैं बताता हूं। सास और बहू अपने घर में रहते हैं, सास तो अपने नशे में है, ये तो बहू है, ये तो मेरी सेवा करने वाली है, तो सास थोड़ा सा उसको टॉर्चर कर रही है, उसको कुछ दुख देने वाले बोल बोल रही है, ऐसा कुछ व्यवहार कर रही है, बहू को वो पसंद नहीं आ रहा है। तो एक तरफ तो वो सहन कर रही है, ये मेरी सास है, कोई बात नहीं, लेकिन मन में सोच रही है कि मैं ये बुढ़िया जब खटिया पर पड़ेगी ना पूरा हिसाब लूंगी, छोड़ूंगी नहीं इसको। तो एक तरफ तो सहन कर रही है लेकिन दूसरी तरफ ऐसे नेगेटिव भी सोच रही है। तो एक तरफ हिसाब किताब छुक्त भी हो रहा है, दूसरे तरफ नया हिसाब किताब बन भी रहा है। कभी इससे तो अच्छा समझदार व्यक्ति क्या करेगा, ठीक है मेरी सास का नेचर ऐसा है, कोई बात नहीं, मुझे सहन करना है। ऐसा सोचती है तो वो नेगेटिव कर्म हमारा पूरा हो जाता है, कर्जा जो है वो हमारा उतर जाता है। तो एक स्लोगन याद रखना है, सहना आत्मा का सच्चा गहना है। सहना आत्मा का सच्चा गहना है। जितनी बड़ी महान विभूति होती है उतनी ज्यादा उसके पास सहन शक्ति होती है, ये महानता की निशानी है। अगर मैं समझता हूं मैं महान व्यक्ति हूं तो उसकी सहन शक्ति भी बहुत ऊंची होना चाहिए। कराची में जब यज्ञ की स्थापना हुई तो एंटी पार्टी वालों ने बाबा ब्रह्मा बाबा को बहुत गालियां दी, बहुत उल्टी सुलटी गालियां दी, लेकिन बाबा के मुख से एक भी शब्द अपशब्द नहीं निकला। ये महानता की निशानी। कहते जितना कोई हमें गालियां देता है उतना उसको भक्ति मार्ग में हमारी मूर्ति पर फूल चढ़ाने पड़ते हैं, गिनती के गिन गिन कर, यहां गालियां देंगे वहां फूल चढ़ाना पड़ेगा उसको। तो आपको याद भी है महाराष्ट्र में एक संत होकर गए हैं एकनाथ महाराज, याद होगा कहीं सुनी होगी कहानी है जी, हाँ पैठान के आपको याद है। उनका एक प्रतिद्वंदी, सवेरे वो नदी पर जा रहे थे नहाने के लिए, तो जैसे नहा के आते थे तो उन पर वो थूकता था, फिर वो जाते थे ना के आता था, मुख से एक शब्द में नहीं बोले। 107 बार हो गया, जैसे 108 बार वो ना कर आए वो पैर पकड़ने लगा, आज से मैं आपका पट्ट शिष्य हूं, मैंने मेरे जीवन में ऐसा सहनशील व्यक्ति देखा ही नहीं है, आप सचमुच महान हो। तो सहन करने से सहनशाह बनते हैं, सहन करने वाले क्या बनते हैं, सहनशाह बनते हैं। हम कहते हैं परिवार में देखिए क्या मुझे सहन करना है क्या, वो क्यों नहीं सहन करती, मैंने ठेका लिया है क्या, बार बार मुझे वो बोलती रहती है, ऐसा कभी कभी हम सोचते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हमें दुख देता है विकर्म हमारे प्रति करता है वो हमें बहुत सुंदर गिफ्ट दे रहा है, सहनशीलता का मेडल देना चाहता है आपको, आपका तो बहुत मित्र है वो। मिलिट्री में जितने मेडल जास्ती होते हैं उतना ऊंच पोजीशन वाला होता है, तो हमें दिव्य गुण का सहनशीलता का मेडल देने के लिए वो व्यक्ति आया है, उसको थैंक्स कहो। तो कहने का भाव है कि हमें किसी के प्रति अशुभ भावना नहीं रखनी है, दुख देने वाला विकर्म नहीं करना है, जिससे हमारा नया हिसाब किताब बने। क्योंकि ये हमारी खुशी को छीन लेता है। कभी कभी हम चलते हैं, चलते चलते अचानक हमारी खुशी गायब हो जाती है बिना कारण। हम सोचते हैं यार क्या बात, क्या है ये, अच्छा भला में था, अच्छी स्थिति थी, अचानक मेरी खुशी गायब हो गई। इसका कारण है कोई पिछला विकर्म आता है जो हमारे खुशी को छीन कर ले जाता है। इसलिए हमें ध्यान देना है कि मेरे पास श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी होना जरूरी है। राजीव गांधी का जब ये हो गया, हत्या हुई, तो उस रात को मुझे नींद नहीं आई। मैं सोच रहा था भारत का कोई लीडर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ऐसी हत्या क्यों हो गई, कारण क्या है? तो मैंने आर्टिकल लिखा श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी। श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी होगी तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको नुकसान पहुंचाए। कहावत प्रसिद्ध है, जिसको राखे साइयां मार सके ना कोई, लेकिन साइयां भी रखेगा किसको, मदद किसको करेगा, जिसके पास श्रेष्ठ कर्म है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही रिस्पांस हमें मिलता है। हाँ, ये तो सब ही जानते हैं। तो इसलिए संगम युग में जब परमात्मा आते हैं तो हमारा लक्ष्य हो कि मुझ आत्मा के पास श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी पढ़ती रहे, बस पढ़ती रहे। सेवा करना माना दुआएं प्राप्त करना। हमारी दादी जी, जानकी दादी जी, 101 साल हो गए अभी भी सेवा कर रही हैं, लंदन में बैठी हैं। इतनी उम्र में सेवा कर रही हैं। क्या बात है, क्योंकि दुआएं जितना हम प्राप्त करते हैं सेवा द्वारा, बहुत खुशी, अजीब सी खुशी और अजीब सा नशा हमें मिलता है। तो हमारा धर्म और कर्म हो मुझे सेवा करनी है, अनेक आत्माओं की दुआएं प्राप्त करनी है। अभी मेरा तन अच्छा है, बहुत सेवा में लगाओ। मेरा अभी मन अच्छा है, खूब सेवा में लगाओ। बुढ़ापे में हमारा मन भी काम नहीं करता है, पता ही नहीं रहता है क्या सोच रहा हूं, क्या कर रहा हूं। अभी श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी कैसे बढ़ा सकते हैं, वो विधि मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। सबसे पहले शुरुआत उसकी होती है श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहना। मैं ऑर्डिनरी आत्मा नहीं हूं, महान आत्मा, भगवान की नजरों में आई हुई आत्मा हूं। भाग्य विधाता स्वयं भगवान मेरा बाप बन चुका है, इसलिए ऐसे धरणी पर मैं पहुंचा हूं। ये धरणी भगवान की अवतरण भूमि है, इस पर पहुंचना भी बहुत श्रेष्ठ भाग्य की निशानी। आपको यकीन नहीं होगा कि सचमुच ये इतना भाग्यशाली स्थान है, पुण्य भूमि है, चरित्र भूमि है, श्रेष्ठ कर्म भूमि है भगवान की। जो भी इस धरती पर पहुंचे हैं बहुत महान आत्माएं हैं। तो हमें श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहना सीखना है, स्वमान में स्थित रहना अर्थात स्वयं ही स्वयं को मान देना सीखना। कोई मान दे न दे मुझे उसकी परवाह नहीं, लेकिन मुझे स्वयं को मान देना सीखना है। इसको अहंकार नहीं कहते हैं। राजा का बच्चा राजकुमार अपने मस्ती में है, स्वमान में है, नशे में है, ये मेरा राज है, ये प्रॉपर्टी मेरे बाप की कल मेरी होने वाली है, उसके चेहरे पर वो नशा है, फलक है, ये वास्तविकता है, ये अहंकार नहीं है। मां बाबा को शुरू दिन से नशा रहता था, मैं सारे संसार की नंबर वन आत्मा नारायण नारायण बनने जा रहा हूं। शुरू दिन से दुनिया जिसके पीछे पागल है, कृष्ण के पीछे, वो कन्हैया मैं बनने जा रहा हूं। शुरू दिन से बाबा को यह नशा था। उस नशे ने बाबा को अपने संपूर्णता के निशाने पर, मंजिल पर जल्दी से जल्दी पहुंचाया। ये नशा काम करता है। जब भी हम अपनी कमी देखते हैं, खामी देखते हैं, त्रुटि देखते हैं, तो हमारे मन में ही हीन भावना आती है, और ये हीन भावना हमें आगे बढ़ने ही नहीं देती है। इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स इज द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल इन आवर स्पिरिचुअल पाथ। हीन भावना हमें कमजोर बनाती है, एकदम नीचे गिराती है, इसलिए हमारे मन में हमेशा स्वमान पनपता रहे। ठीक है, ये पहले स्टेप है। और श्रेष्ठ स्वमान में रहने से हमारा मन का जो क्रिएशन होगा ना, हमारा मन की जो रचना है, बहुत शुद्ध संकल्प, बहुत श्रेष्ठ संकल्प, बहुत शक्तिशाली संकल्पों के रूप में होगी। हेल्दी मां बाप के बच्चे भी हेल्दी होते हैं, और जो एकदम वीक होते हैं मां बाप, उसके बच्चे भी ऐसे होते हैं। तो मन स्वमान में रहने से अपने को शक्तिशाली अनुभव करता है, और बहुत शक्तिशाली संकल्पों की रचना करता है। और बीज श्रेष्ठ कर्म जो संकल्प है, वह हमारे श्रेष्ठ कर्मों का बीज कहलाता है। जैसा बीज होता है वैसे फल निकलता है। अगर शक्तिशाली संकल्प, सकारात्मक संकल्प रूपी बीज मेरे मन में उत्पन्न होता है, उससे श्रेष्ठ कर्म हमारे जीवन में बढ़ते जाते हैं। और जैसे जैसे श्रेष्ठ कर्म करते जाते हैं, उससे क्या होता है, हमारे जीवन रूपी पेड़ पर दिव्य गुणों के फल
और फूल लदे रहते हैं।
पेड़ कौन सा अच्छा लगता है?
जिस पर बहुत फल लगे हैं, फूल लगे हैं, बहुत प्यारा लगता है।
मेरे जीवन रूपी पेड़ पर पांच दिव्य गुणों के फल और फूल
लगे रहे, लदे रहे,
तो मैं अनेक आत्माओं को सुख दे सकता हूं, अनेकों का भला कर सकता हूं। लेकिन ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने के लिए शक्ति की आवश्यकता है। श्रेष्ठ संकल्प तो मन में किया है, लेकिन श्रेष्ठ संकल्पों को श्रेष्ठ कर्म में रूप देना चाहते हैं तो आवश्यकता है शक्ति की। मैं 94 में जर्मनी गया था और वहां कुछ वैज्ञानिकों से मिल रहा था। 50-60 बड़े बड़े वैज्ञानिक थे। मुझे टॉपिक दिया था द आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, हाउ टू डेवलप द आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। मैंने कुछ टिप्स दिया उनको। प्रवचन के बाद एक साइंटिस्ट सभा में खड़ा होकर प्रश्न पूछने लगा। मेरा प्रश्न है, जवाब देंगे आप? आज तक मुझे इसका जवाब नहीं मिला है, आप देंगे? जवाब बहुत लॉजिकल था। मेरा प्रश्न है, दिन प्रतिदिन इस संसार में आध्यात्मिक संस्थाओं का नंबर बढ़ता जा रहा है, लेकिन दूसरे तरफ मनुष्य के चरित्र का पतन भी हो रहा है। ये क्यों हो रहा है मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अगर आध्यात्मिक संस्थाओं का नंबर बढ़ रहा है तो मनुष्य के चरित्र का उत्थान होना चाहिए, लेकिन उत्थान के बजाय पतन दिखाई दे रहा है। क्यों हो रहा है मेरे समझ के बाहर है, इसका जवाब चाहिए मुझे। मैंने जवाब दिया, किसी भी संस्था में आप जाएंगे ना, बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं वो। किसी भी संस्था में आप जाइए, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में भी अच्छा ज्ञान मिलता है, और नया ज्ञान नहीं मिलता है, जो और जगह मिलता है वही यहां मिलता है। थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि स्वयं परमात्मा देते हैं यहां। तो ज्ञान अर्थात युक्तियां लोग हमें बताते हैं विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए। युक्तियां बढ़ चढ़कर लोग बताते हैं, बड़ी बड़ी सभाओं को संबोधित करते हैं, लेकिन युक्ति को जीवन में धारण करने के लिए आवश्यकता है शक्ति की। शक्ति का सोर्स कौन है, शक्ति पाने का तरीका क्या है, शक्ति कैसे मिल सकती है, ये केवल और केवल ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में है और किधर भी नहीं। मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि मैं इस संस्था में आने के पहले कोई संस्था नहीं छोड़ी जहां मैं नहीं गया। एक ही मेरा संकल्प था, इस धरती पर भगवान आए होंगे तो मैं उनको मिलना चाहता हूं, एक ही संकल्प था मेरा। और फिर वो शक्ति का सोर्स कौन है, परमात्मा है, उनसे शक्तियां पाने की विधि हमें यहां मिली, और जैसे जैसे शक्तियां प्राप्त होती गईं, वैसे वैसे जीवन में परिवर्तन आने लगा। एक तरफ विकार छूटते गए, बुराइयां मिटती गई, और दूसरी तरफ दिव्य गुण आने लगे, अच्छाइयां आने लगे। क्योंकि युक्ति प्लस शक्ति इज इक्वल टू विकारों से मुक्ति और दिव्य गुणों की प्राप्ति। चेहरे को मेकअप कैसे करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? हाँ जी बोलिए। नींद से उठ के ऐसे ही मेकअप करना शुरू करेंगे या क्या करेंगे? अच्छी तरह से उसको वॉश करेंगे, साफ करेंगे, फिर अच्छी तरह से उसको मेकअप करेंगे। तो परमात्मा भी आत्मा की मेकअप कैसे करते हैं, पहले तो सारे दाग मिटा देता है, जो भी कमियां हैं, गंदगी है, त्रुटियां हैं, विकारों की, वो सारी मिटा देता है, साफ कर देते हैं। फिर दिव्य गुणों के आभूषणों से उसका बहुत अच्छा श्रृंगार करते हैं। जितना दिव्य गुण हम जीवन में धारण करते हैं, उतना हमारे व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाते जाते हैं। तो श्रेष्ठ संकल्पों को श्रेष्ठ कर्मों का रूप देने के लिए आवश्यकता है शक्ति की, योगाभ्यास के द्वारा परमात्मा से शक्तियां प्राप्त करने की। तो धीरे धीरे हमारे कर्म श्रेष्ठ बनते जाते हैं। भक्ति मार्ग में कर्मों की खेती गाई है। हम मंदिर में जाते हैं तो भगवान से क्या मांगते हैं, भगवान मुझे सद्बुद्धि दो, मुझे श्रेष्ठ कर्म करने की कला सिखा दो, ऐसा मांगते हैं ना, क्योंकि यही हमारे साथ चलते हैं। तो श्रेष्ठ कर्म करने के लिए बहुत सुंदर युक्ति है, पहले कमल आसन धारी हमें बनना है। कमल आसन धारी बनना अर्थात इस संसार में रहते हुए स्वयं को न्यारे अनुभव करना, साक्षी होकर आत्मा को देखना, अपने संसार को देखना। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म कर रही हूं, इसको कहते साक्षी दृष्टा बनना। ये आत्मा अपने हाथों से लिख रही है, वो आत्मा अपने पैरों से चल रही है। तो स्वयं के पार्ट को साक्षी देखें और औरों के पार्ट को साक्षी देखें, न्यारे होकर देखने से कमल आसनधारी होकर कर्म करते हैं तो हमारे कर्म श्रेष्ठ होते जाते हैं। क्योंकि परमात्मा की याद हमें सहज होती है, जितना इस दुनिया से न्यारा उतना परमात्मा का प्यारा अनुभव करते हैं। जितना इस पुरानी दुनिया से वैराग होता है, उतना परमात्मा से अनुराग हमारा बढ़ता जाता है, प्यार हमारा बढ़ता जाता है। ये बात है, कमल आसनधारी बनकर हमें कर्म करना है। दूसरा, लक्ष्मी नारायण के सामने बैठकर अपने कर्मों की तुलना करनी है, इनके कर्म कैसे हैं, मेरे कर्म कैसे हैं। लक्ष्मी नारायण के कर्म इतने श्रेष्ठ कैसे हैं, क्योंकि उन्होंने श्रेष्ठ लक्ष्य को रखा और परमात्मा की याद में रहकर कर्म किया, इसलिए उनके कर्म यादगार बन गए, श्रेष्ठ बन गए। समझा? तो मेरा कर्म भी कोई साधारण न हो, लेकिन विशेष हो, प्रेरणा देने वाला हो। मैं अकेला जीवन जी रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मेरे जीवन के द्वारा अनेकों को प्रेरणा श्रेष्ठ मिलती है, अनेकों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है, तो उससे हमें कमीशन मिलता है। बिजनेस में भी हम अपने भाई को मदद करते हैं, अपनी बहन को मदद करते हैं, तो जिंदगी भर वो कहते दादा ने मुझे मदद की थी, इसलिए मैं ऐसी प्रोग्रेस कर चुकी हूं, कहते हैं ना। तो ऐसे भी समाज में हम एक दो को मदद करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, अपने श्रेष्ठ जीवन के द्वारा अनेक आत्माओं को श्रेष्ठ जीवन जीने की कला प्रदान करना, ऐसी सेवा हम अनेक आत्माओं की कर सकते हैं। प्रेरणा स्रोत हमारा जीवन हो, समझा। दूसरी बात, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए विशेष हमें ध्यान देना है कि कर्म क्षेत्र पर जब हम होते हैं, लौकिक कर्म कर रहे हैं या अलौकिक कर्म कर रहे हैं, कोई भी कर्म कर रहे हैं, उस समय हमें ध्यान देना है मेरे साथ तीन सेवक सदा होने चाहिए। आपस में कभी तू तू मैं आपस में झगड़ा होता है, कभी आपस में टकराव होता है, बुरे कर्म होने की संभावना हो सकती है, इसलिए मेरे पास तीन सेवक होने चाहिए, धैर्य, शांति और स्नेह। धैर्य, शांति और स्नेह, ये तीन सेवक होंगे तो आपसे कभी भी विक्रम हो ही नहीं सकता है, कोई किसी से टकराव हो नहीं सकता है, ये गारंटी है। किसी भी हालत में मुझे धैर्य को नहीं छोड़ना है, पेशेंस को रखना है। पेशेंस छोड़ते ही हम माया का पेशेंट बन जाते हैं। शांति को कभी भी मुझे भंग नहीं होने देना है, क्योंकि कितना भी कुछ भी करे ना, मुझे शांत रहना है। और स्नेह को कम होने नहीं देना है। ये तीन सेवक हमारे साथ में होंगे ना, तो कभी भी हमारे से विक्रम हो ही नहीं सकता है, अच्छे कर्मों का खाता हमारा बढ़ता जाता है। अच्छे कर्मों का खाता नहीं होगा तो मन हमारा खाता रहता है, मन हमें बाइट करता रहता है, खाता रहता है। स्नेह हमारा कभी भी किसी से कम न हो, स्नेह हमारा किसी से कब बढ़ता है और किसी से कब घटता है, भाई बताओ। हमारा सभी के साथ बहुत अच्छा स्नेह हो, ऐसा व्यक्तित्व मेरा हो, लोकप्रिय व्यक्तित्व हो, लेकिन उसके लिए एक बात समझना है, जब किसी की हम कमी देखते हैं तो हमारा स्नेह कम हो जाता है, और किसी की जब विशेषता देखते हैं तो हमारा स्नेह बढ़ता है। सीधी बात है। तो कमियां हर एक में है, कमियों को निकालने के लिए हर कोई प्रयास करता है, ठीक है भाई। हमें किसी की कमी देखना ही नहीं है, नेगेटिविटी देखना ही नहीं है, पॉजिटिविटी का चश्मा पहनना है और हर एक आत्मा से गुण ग्रहण करना है। जैसे मधुमक्खी हर एक फूल से मधु लेती है, ऐसे मुझे हर एक आत्मा से विशेषता रूपी मधु लेना है, गुण रूपी मधु लेना है और गुण ग्राही बनकर रहना है। अगर मैं हर एक की कमी देखता रहूंगा, कमी ढूंढता रहूंगा, कमी लेता रहूंगा, तो ये बुद्धि रूपी जो डब्बा है ना मेरा, किचड़े का डब्बा बन जाएगा, डस्टबिन बन जाएगा, जिससे माया के अनेक रोग भी मुझे लग सकेंगे। चॉइस है, तालाब एक ही है, हंस मोती चुगता है और बगुला मछली लेता है, एक ही तालाब है। तो हमें इस पर विशेष ध्यान देना है कि हमारी वृत्ति हमेशा गुण ग्रहण करने वाली हो, तो धीरे धीरे हमारे कर्म श्रेष्ठ बनते जाएंगे। और उसमें विशेष हमें ध्यान देना है, कर्म करते समय तीन बातों का प्रभाव हमारी आत्मा पर होने की संभावना होती है। जहां पर भी आप घर में हैं, बाहर में हैं, दार में हैं, समाज में हैं, दुकान में हैं, मकान में हैं, तीन बातों की संभावना आत्मा पर होने की संभावना हो सकती है। जो हम कर्म कर रहे हैं उसका प्रभाव आत्मा पर पड़ सकता है, साथी जो होते हैं उन साथियों की स्थिति का प्रभाव आत्मा पर पड़ने की संभावना हो सकती है, और तीसरा वहां का जो वातावरण है, नेगेटिव वातावरण है या भय का वातावरण है, कोई भी वातावरण है, उसका प्रभाव आत्मा पर होने की संभावना हो सकती है, जिससे मेरा विकर्म होने की संभावना हो सकती है। इसलिए हमें क्या करना है, ईश्वरीय नशे का प्रभाव आत्मा पर अगर होगा तो तीनों बातों के प्रभाव से हम न्यारे रहते हैं और हमारे कर्म बहुत श्रेष्ठ बनते जाते हैं। इस पर हमें ध्यान देना है। कल श्रेष्ठ कर्म हमारे साथ कैसे चलते हैं, श्रेष्ठ संस्कार के रूप में। मां के पेट में गर्भ जो होता है, 5 मास का गर्भ होता है, उसमें आत्मा नहीं होती है, लेकिन शरीर छोड़ के वह आत्मा आती है, 4 मास 9 दिन रहती है। उसमें क्या होता है, उस पीरियड में जो संस्कार लेकर आती है उसके आधार पर चेहरे के फीचर्स बनते हैं और ब्रेन की क्वालिटी डेवलप होती है उस पीरियड में। अगर आने वाली आत्मा बहुत रॉयल है, जेंटल संस्कार वाली है, तो उसके फीचर्स भी बहुत रॉयल होते हैं। और वो आने वाली आत्मा इतनी रॉयल नहीं है तो उसके फीचर्स भी पुअर होते हैं। तो अभी चॉइस है हमें, घर वापस जाने के पहले, परमधाम घर वापस जाने के पहले बहुत रॉयल संस्कार मुझे बनाने हैं, क्रिएट करने हैं, जो आत्मा के साथ जाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, सदा श्रेष्ठ सम्मान में रहना है, श्रेष्ठ संकल्प करना है, श्रेष्ठ बोल बोलना है, श्रेष्ठ कर्म करते रहना है और श्रेष्ठ संस्कार आत्मा में स्वतः ही धारण होने लगते हैं जो हमारे साथ चलते हैं। ऊपर से जब आत्मा आती है ना धरती पर, तो उसको कोई बोलता नहीं, आपको जो है ना राजा के घर में जन्म लेना है, आपको है ना प्रजा के घर में जन्म लेना है, ऐसा कोई बोलता नहीं। लेकिन जो आत्मा आने वाली है उसके जो संस्कारों के समान संस्कारों के आधार से रॉयल आत्मा है, तो राजा महाराजा के घर में ऑटोमेटिक जन्म लेती है, और साधारण संस्कार है तो साधारण परिवार में जन्म लेती है। तो कर्मों का बहुत गहरा कनेक्शन हमारे संस्कारों के साथ होता है। इसलिए हमारे संस्कार बहुत श्रेष्ठ हो। राजा महाराजा बनने वाली आत्मा के चेहरे पर राजाई का नशा होगा, कुमारी होगी, मस्ती होगी, तो उसके ऐसे कर्म होंगे और उसके आधार से ऐसे रॉयल संस्कार होके भविष्य उसका उज्ज्वल होगा। और अपने को दीनहीन समझने वाला, हमेशा इन्फेरिटी में रहने वाला, संकल्प भी ऐसे ही करेगा, संस्कार भी ऐसे होंगे और उसका फ्यूचर भी ऐसे ही होगा। इस संसार में सबसे परफेक्ट फीचर्स किसके हैं? लक्ष्मी नारायण के, सबसे परफेक्ट पूरे वर्ल्ड में। उनके फीचर्स से कंपेयर करने से हमें पता चलता है मैं आत्मा कितनी रॉयल हूं और कितना मुझसे बनना है रॉयल। ये भी हमें प्रेरणा मिलती है। तो आप महान आत्मा इस महान भूमि पर पहुंचे हुए हैं और ये आपने अच्छा चांस लिया है, तो अभी यहां थोड़ी तपस्या करने का चांस लेना है। ये क्योंकि सारे विश्व के ग्लोब पर सबसे पावरफुल ये स्थान है, सारे विश्व के ग्लोब पर सबसे पावरफुल स्थान ये है जहां भगवान इतने वर्षों से आ रहे हैं और सारे वर्ल्ड की क्रीम सोल हमारी दादियां और दादा हैं, वो यहां इतने वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने इस वायुमंडल को, इस स्थान को बहुत चार्ज करके महान बनाया है, तीर्थ स्थान बनाया है। इसलिए यहां आने के बाद साधना बहुत अच्छी करके मुझे सुंदर अनुभव जमा करने हैं, ये लक्ष्य हमारा हो कि परमात्मा इतना श्रेष्ठ ज्ञान, उच्च ज्ञान, सत्य ज्ञान हमें देते हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? बहुत सुंदर और गहन अलौकिक अनुभव करना, अनुभव की अथॉरिटी बनना, ये इसका प्रमाण है। समझा? और इस ज्ञान मार्ग में चलना है और अनुभव करना है तो एक कंडीशन है, अनुभव। जब तक स्वयं को अनु नहीं समझेंगे, बिंदु नहीं समझेंगे, आत्मा नहीं समझेंगे, तब तक इस ज्ञान मार्ग में कोई अनुभव आपको हो ही नहीं सकते, चाहे कितने भी साल चलो। और अनु समझेंगे, बिंदु समझेंगे, तो अलौकिक अनुभव की खान आपको मिलेगी, अलौकिक अनुभव की वर्षा आप पर होती जाएगी, माला माल हो जाएगी। तो अभी हम बहुत सुंदर योग का अनुभव करना चाहते हैं, ठीक है भाई, करना चाहेंगे ना? लेकिन थोड़ा 2 मिनट हम थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे, अगर आप माइंड नहीं करेंगे तो खड़े हो जाएंगे, थोड़ा सा सुस्ती को भगा देंगे। अभी वर्तमान समय के अनुसार हमें जब नुमा शाम का या अमृत वेले का योग करते हैं, वो हमारा शक्तिशाली योगाभ्यास होना जरूरी है। बाबा ने स्पष्ट कह दिया है, शिव बाबा ने स्पष्ट कह दिया है, साधारण योगाभ्यास करने का समय पूरा हो चुका है, अभी जो समय चल रहा है वो शक्तिशाली योगाभ्यास करने का चल रहा है, ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास करने का चल रहा है। क्योंकि हम जो हर रोज योग करते हैं, जो मुरली सुनते हैं, सेंटर पर जाते हैं, लेकिन हमारे संस्कारों में परिवर्तन जितना होना चाहिए उतना नजर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि साधारण योगाभ्यास से हमारे पुराने जो 63 जन्म के संस्कार हैं वो नरम भी होते हैं, गर्म भी होते हैं, लेकिन वो मेल्ट नहीं होते हैं। उस मेल्ट होने के लिए ऐसी ज्वाला स्वरूप योग की अनुभूति बढ़ाते रहना बहुत जरूरी है। तो शक्तियों एक तरफ संस्कारों को परिवर्तन करना और दूसरे तरफ शक्तियों का स्टॉक जमा होना, ये दोनों काम तभी हो सकते हैं जब शक्तिशाली योगाभ्यास हम बढ़ाते जाते हैं। इस हॉल में 87 में हम शिव बाबा से मिल रहे थे मधुबन निवासी, तो बाबा से एक बात पूछा कि बाबा हमारा योग शक्तिशाली है या नहीं कैसे पता चले, शक्तिशाली योग की क्या निशानी है। तो बाबा ने बताया था शक्तिशाली योग की दो निशानियां होती हैं। शक्तिशाली जब योग होता है तो योग अग्नि के रूप में अनुभव होता है और उस अग्नि में मेरे विक्रम भस्म हो रहे हैं ऐसा अनुभव एक तरफ होता है और दूसरे तरफ हल्केपन की और खुशी की भी अनुभूति होती है। हल्केपन की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि पुराना विकर्मों का बोझ हमारा कम होता है। और खुशी की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि हमारी प्रोग्रेस होती है संपूर्णता के लक्ष्य की ओर, हम आगे बढ़ते जाते हैं, इसलिए हमें खुशी की अनुभूति होती है। तो ऐसी अनुभूतियां हमें करते रहना है, तभी हम समझ सकते हैं मेरा योगाभ्यास शक्तिशाली है। ठीक है ना? तो ऐसा हमें होगा। आ रहा है? हा? नहीं है, तो सालोनर अलग है, लाल लाइट करून तो काय म्हण भेटला तो बोलने वाला। ओम शांति। थोड़ा सीधा होके बैठेंगे जरा। हम ओम की ध्वनि करेंगे। कराची में क्या हुआ, जब यज्ञ के ओम मंडली की स्थापना हुई ना, तो हमारी दादियां बुल्ढा दादी जिनके तन में बाबा थे 9 साल की थी, प्रकाशमणि दादी जी 16 साल की थी, मम्मा 16 साल की थी, जैसे ये यज्ञ में आते थे और ओम मंडली में बैठकर ओम की ध्वनि करते थे, बहुत सुंदर अनुभव होते थे। तो वो बाबा ने बहुत बहलाया, 14 साल तक वहां उनको बहुत बहलाया। तो अभी वो चांस तो हमें नहीं मिला भाई, लेकिन ओम की ध्वनि करने का, चखा चुके करने का चांस तो मिल सकता है। इसलिए हमें अभी ओम की ध्वनि करना है, लेकिन बड़ी विधि पूर्वक करना है, केवल ये बाजा नहीं बजाना है। कैसे करना है? यहां भ्रुकुटी के बीच में एक चमकता हुआ सितारा देखना है, दिव्य नेत्र से, इन नेत्रों से नहीं, आत्मा की जो आंख है, बुद्धि रूपी नेत्र है, उससे हमें देखना है। ये मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं, इस दिव्य सितारे से ओम का संकल्प निकल रहा है और वो मुख के द्वारा इस वायुमंडल में बाहर निकल रहा है, फैल रहा है, इस वायुमंडल को भी पवित्र बना रहा है। और मैं जो आत्मा का अभ्यास कर रही हूं उसमें मुझे बहुत एकाग्रता की अनुभूति हो रही है। ठीक है ना? तो ये ऐसे हम अनुभूति करेंगे, लेकिन आधा मिनट के लिए आंखें बंद करना है आपको, तीसरी आंख पूरी खोलना है और विधि पूर्वक करना है मेरे साथ। मैं बहन हूं, भाई हूं, कैसे करो ओम की ध्वनि? कोई बहन नहीं, कोई भाई नहीं, सभी आत्माएं यहां बैठे हैं, उसी रूप से हमें ये अभ्यास करना है। ठीक है? ओम शांति। इस शरीर रूपी चैतन्य दीपक में इस शरीर रूपी चैतन्य दीपक में मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति जाग माग रही हूँ। मस आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से दिव्यता का प्रकाश दिव्यता की रोशनी चारों ओर फैल रही है। मस आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति के चौ और सुंदर आभा मंडल दिव्य प्रकाश का औरा अनुभव हो रहा है। भ्रुकुटी के बीच आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति को देखते हुए सभी मेरे साथ ओम की ध्वनि करेंगे। सभी बोलेंगे ओ सुंदर दिव्य
और भाव्य ताज मस्त आत्मा के चहुओ अनुभव हो रहा है परम आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति दिव्य बुद्धि रूपी विमान में बैठकर ब्रह्मांड की दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूँ, उड़ती हुई जा रही हूँ। इस विश्व के ग्लोब से पार, इस साकारी दुनिया से पार, चंद्र सूर्य तारागण से भी पार जा रही हूं। ओह, मैं आत्मा बिंदु ज्योति फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूं, जहाँ चारों ओर सफेद सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस धारण की है। कितनी हल्की फुल्की ड्रेस है यहाँ। फरिश्तों के शहंशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे अति मीठे शिव बाबुल भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा अति स्नेह भरी दृष्टि मुझ परिस्ते को दे रहे हैं। कितना सुंदर अनुभव है यह। अभी अभी मैं फरिश्ता मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर निराकारी दुनिया की ओर जा रही हूँ, उड़ती भी जा रही हूँ। ओह, परमधाम रूपी घर में पहुंच गई हूँ, जहाँ चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल सुनहरी लाल ही लकाश दिव्य प्रकाश प्रकाश है, शांति शांति है। कितना प्यारा घर है यह मेरा परम धाम। ओहो, मेरे प्राणों के प्राण मेरे प्राणों के आधार मेरे प्राण नाथ
नित्यम शिवम सुंदरम शिव पिता मुझ आत्मा के समक्ष विराजमान है। मैं आत्मा ज्योति शिव पिता के छवि को दिव्य चक्षु से देख रही हूं, देखती ही जा रही हूं, उनकी सुंदरता का भरपूर आनंद ले रही हूं। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों की अथाह सागर है, हजारों सूर्यों से शक्तिशाली है, शक्तियों के सागर शिव पिता से बेहद शक्तिशाली किरणों की वर्षा निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है, होती ही जा रही है, निरंतर होती जा रही है। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, अनंत शक्तियां, प्रचंड शक्तियां, अद्भुत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, और योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप भस्म हो रहे हैं। मैं आत्मा बिंदु स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापिस वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर आ रही हूं। इस साकारी शरीर में भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान हो चुकी हूं।
मेरे मस्तक मणि से अष्ट शक्तियों की चमक चारों ओर फैल रही है। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि की चमक चमक रही है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।
ओम शांति। आज ओम प्रकाश अभि प्रकाश भाई ने बहुत सुंदर योग कराया हम लोग, और कर्मों की गहन गति पर जो क्लास इन्होंने लिया वो बहुत ही अच्छा था। हमें अपने कर्मों पर क्यों ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये हमें हमारे भविष्य को बनाने में इसका कितना इम्पोर्टेंट रोल है, इस पर इन्होंने विशेष प्रकाश डाला। हम उनके बहुत आभारी हैं, और कोलाबा क्लास की तरफ से, कोलाबा की आई हुई टीम की तरफ से उन्हें धन्यवाद देते हैं।
कब कब हाँ हाँ तो हाँ कभी कभी क्या होता है, घर में बैठे हैं, इधर बैठे हैं, अचानक कोई कारण नहीं है, एकदम उदासीनता, एकदम दुख की लहर आ जाती है। क्यों? क्योंकि पिछले जन्मों का जो कर्म हमारा है, कर्जा है, वो हमारी खुशी को छीन कर ले जाता है, क्योंकि हमारा ही कर्म है पिछले जन्म में किया हुआ, जाने अनजाने वो आके खुशी गायब कर देता है। अभी इस पोजीशन में हमें पुनः खुशी में कैसे लौट आना है,
तो सबसे पहले आत्मिक स्थिति में बिंदु बिगिनिंग पॉइंट बिंदु में स्थित होना है। मैं महान आत्मा हूँ, भगवान की नजरों में आई हुई आत्मा हूँ, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। इस समान में स्थित रहना है और समान में स्थित रहने से सकारात्मक संकल्प, शक्तिशाली संकल्प, शुद्ध संकल्प मन में क्रिएट होने का सिलसिला शुरू होगा और धीरे धीरे खोई हुई खुशी पुनः लौट आ जाती है। लेकिन मैंने 1,00,000 रुपया आपसे उधार लिया है, मैं वापस कर रहा हूं, 50,000 दिया, 60,000 दिया, अभी 40 बाकी है, जब तक 40 नहीं दूंगा तब तक आप मुझे टोकती रहेगी, मुझे दो वापस। 1,00,000 पूरा हो जाएगा ना, मेरा आपसे कोई संबंध नहीं। तो ऐसे जो पिछला 63 जन्मों का जो हमारा निगेटिव अकाउंट है विकर्मों का, वो जब पूरा हो जाता है उसके बाद निरंतर खुशी नशा बढ़ता ही जाता है, वो कभी कम नहीं होता है, कभी कम नहीं होता है, वो फिर पोजीशन हमारी हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं वो योगाभ्यास के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन।